नमस्कार भारत, तारीख 16 अक्टूबर, दिन मंगलवार, मैं हूं मानसी दाश। ट्रंप ने कहा खाशुजी की हत्या बदमाशों का काम हो सकती है, क्या है इसके मायने?
सऊदी अरेबिया ने हो सकता रियलाइज किया और बेसिकली अपनी पोजीशन को उन्होंने रिवर्स की, तो उसके बेसिस पे ट्रंप ने पोजीशन रिवर्स की।
बढ़ रही है विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर के इस्तीफे की मांग।
फेयर तरह से जांच के लिए मंत्री को अपने मंत्री पद छोड़ना चाहिए और यही हम पत्रकारों की मांग है कि मामले की जांच हो।
पलवल की एक मस्जिद पर लगा हाफिज सईद से जुड़ी संस्था से पैसे लेने का आरोप।
वो चंदा के तौर पे वहाँ से जो आए थे बच्चियों की कुछ शादी के लिए, कुछ चंदा जो है वहाँ के अमीरों ने बहुत थोड़ा बहुत दिया, उनके लिए दिया है, वो उसको आगे मुसलमान ने लगाया। इसमें
होंगी खबरें और भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। तुर्की के जांच अधिकारी पत्रकार जमाल खाशोजी के लापता होने के मामले की जांच के लिए सऊदी के दूतावास के भीतर गए हैं। खाशोजी 2 अक्टूबर को सऊदी दूतावास जाने के बाद से लापता हैं। इसी बीच अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी के शाह सलमान से फोन पर खाशोजी के बारे में चर्चा करने के बाद कहा है कि हो सकता है कुछ बदमाशों ने उनकी हत्या की हो। ट्रंप ने यह भी कहा है कि उन्होंने वो मीडिया रिपोर्टें देखी हैं जिनमें कहा गया है कि सऊदी अधिकारी एक बयान जारी कर ये कह सकते हैं कि पूछताछ के दौरान खाशोजी की मौत हो गई थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो को इस मामले पर चर्चा करने के लिए सऊदी अरब भेजा है, जहां से वो तुर्की भी जा सकते हैं। विद्रोहियों के उत्तरी सीरिया को छोड़कर जाने की समय सीमा समाप्त हो गई है, लेकिन उनके इस इलाके से जाने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। तुर्की और सीरिया की निगरानी में इदलिब प्रांत में विद्रोहियों और सरकारी बलों के बीच एक बफर क्षेत्र स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सीरिया के विदेश मंत्री वालिद अल मुअल्लिम का कहना है कि समय निकलता जा रहा है। उन्होंने कहा, इदलिब के मौजूदा हालात को लेकर हम शांत नहीं रह सकते हैं। नुसर फ्रंट अपना वादा पूरा नहीं कर रहा है। मेरा कहना है कि हमें और इंतजार करना चाहिए, लेकिन ठीक इसी समय हमारी सेनाओं ने इदलिब को घेरे में लिया हुआ है। दक्षिणी पश्चिम फ्रांस के कारकासोन शहर में अचानक आई बाढ़ से कम 11 लोगों की मौत हो गई है। इस इलाके में एक ही दिन के भीतर 3 महीनों की बराबर बारिश हुई है। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं और इस इलाके में कई सालों की सबसे भयावह बाढ़ आई है। बाढ़ से प्रभावित एक स्थानीय निवासी ने बताया, बारिश बीती रात 2 बजे शुरू हुई, उसके बाद बस बारिश ही होती रही। मेरी पत्नी ने कहा कि उसे पानी की आवाज आ रही है। मैंने बत्ती जलाई, अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। मैंने बिस्तर से पैर नीचे रखे तो वो पानी में थे। मैं जल्दी से किचन की ओर गया और जोर से दरवाजा खोला, पानी मेरी कमर तक आ गया। रूस के ऑर्थोडॉक्स चर्च का कहना है कि वो कॉन्स्टेंटिनोपल पैट्रियार्किट से सभी संबंध समाप्त कर रहा है। इस्तांबुल स्थित कॉन्स्टेंटिनोपल पैट्रियार्किट दुनिया भर के 30 करोड़ रूढ़िवादी ईसाइयों का सबसे बड़ा धार्मिक केंद्र है। हाल ही में कॉन्स्टेंटिनोपल पैट्रियार्किट ने यूक्रेन के ऑर्थोडॉक्स चर्च की रूस के ऑर्थोडॉक्स चर्च से स्वतंत्रता को मान्यता दी थी। रूसी चर्च ने इसके विरोध में अपने आप को अलग किया है। इसे रूढ़िवादी ईसाई धर्म में बड़ा विभाजन माना जा रहा है। अमेरिकी सीनेटर एलिजाबेथ वॉरेन ने अपने डीएनए टेस्ट के नतीजे पेश करके राष्ट्रपति ट्रंप को जवाब दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने वॉरेन के अमेरिका की मूल निवासी होने के दावों पर सवाल उठाए थे। डीएनए टेस्ट में वॉरेन के यूरोपीय नस्ल का होने का पता चला है, लेकिन ये बात भी सामने आई है कि 6 से 10 पीढ़ियां पहले उनके पूर्वज अमरीकी मूल निवासी रहे होंगे। वॉरेन साल 2020 के राष्ट्रपति चुनावों में डेमोक्रेट पार्टी की ओर से दावेदारी पेश कर सकती हैं। दुनिया की मशहूर सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक पॉल एलन का 65 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वो कैंसर से पीड़ित थे। 1970 के दशक में उन्होंने बिल गेट्स के साथ मिलकर माइक्रोसॉफ्ट शुरू की थी और 1983 में इस कंपनी को छोड़ दिया था। बेल्जियम में एक काले व्यक्ति को पहली बार किसी शहर का मेयर चुना गया है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे सभी श्रोताओं को मानसी दास का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव सुन सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय खबर से। सऊदी अरब के लापता पत्रकार जमाल खाशुजी की तलाश के मामले में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने सऊदी अरब के सुल्तान शाह सलमान से इस सिलसिले में फोन पर बात की है। ट्रंप ने कहा है कि शाह सलमान का कहना है कि उन्हें इस मामले में किसी तरह की जानकारी नहीं है और हो सकता है कि खाशुजी की हत्या किन्हीं बदमाशों का काम हो। इधर अमरीकी मीडिया में इस तरह की अपुष्ट खबरें आ रही हैं कि सऊदी अरब ये स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया है कि पूछताछ के दौरान अकस्मात ही खाशोजी की मौत हो गई थी, जबकि उनकी योजना उन्हें अगवा करने की थी। ट्रंप ने पत्रकारों से कहा है कि उन्हें इन मीडिया रिपोर्ट्स के बारे में जानकारी है, लेकिन इनकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और उन्हें सऊदी अरब के बयान का इंतजार है। साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा कि उनके कहने पर विदेश मंत्री माइक पोम्पियो सऊदी सुल्तान शाह सलमान से बात करने सऊदी अरब पहुंच रहे हैं, जिसके बाद वो तुर्की जाएंगे।
माइक पोम्पियो इज लीविंग लिटरली विद इन एन आवर और सो, ही इज हेडिंग टू सऊदी अरेबिया।
माइक पोम्पियो कुछ देर के भीतर सऊदी अरब के लिए रवाना हो रहे हैं। हम सच की तलाश की हर संभव कोशिश करेंगे। मैं आपको बता दूं कि शाह सलमान ने इसके बारे में किसी तरह की कोई जानकारी होने से इनकार किया है। वो शायद सच में कुछ नहीं जानते, या फिर मैं उनके दिमाग के भीतर झांकना नहीं चाहता, लेकिन हो सकता है कि ये किसी अपराधी यानी किन्हीं बदमाशों ने जमाल खाशुजी की हत्या की हो। हम मामले की तह तक जरूर पहुंचेंगे। ये थे अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। सऊदी सरकार के आलोचक माने जाने वाले पत्रकार जमाल खाशुजी 2 अक्टूबर को इस्तांबुल स्थित सऊदी अरब के वाणिज्यिक दूतावास गए थे और वो वापस नहीं लौटे। तुर्की के जांच अधिकारियों का आरोप है कि दूतावास के भीतर उनकी हत्या की गई है। देर रात तुर्की के जांच अधिकारियों ने इस्तांबुल में मौजूद सऊदी अरब के दूतावास की तलाशी भी ली है। सऊदी अरब अब तक सभी आरोपों से इनकार करता रहा है। जमाल खाशुजी के लापता होने के मामले में ट्रंप के बयान के क्या मायने हैं और क्या तुर्की के अधिकारियों को किसी तरह के कोई सबूत मिले हैं? बीबीसी संवाददाता दिलनवाज पाशा ने अमरीका के डेलावेयर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर मुक्तदर खान से अब से कुछ देर पहले बात की और उनसे यही सवाल किया।
टर्किश की जो पुलिस है उनके पास से रिपोर्ट्स क्लियरली आ रहे हैं कि उनको दो चीजों के सबूत मिले हैं। एक, उनको ये सबूत मिला कि वहां पे खाशुजी का कत्ल हुआ था, और दूसरा उनको ये भी सबूत मिला कि उन्होंने एविडेंस टैम्परिंग करने की कोशिश की, यानी धोने वगैरह की कोशिश की, लेकिन बहुत मुश्किल है। अगर खून का ब्लड स्प्लैटर अगर बहुत ज्यादा होता है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट छुपाने के लिए। तो ये सबूत आ रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो किंग सलमान से उनकी जो बातचीत हुई उसके बेसिस पे वो कह रहे हैं कि हो सकता कि कोई रोग किलर्स ने यह हरकत की है। सऊदी अरेबिया का जो नॉर्मल ऑपरेशन स्टाइल होता है इस तरह के डिसिडेंट्स वगैरह का, वो असैसिनेशन नहीं करना चाहते। ईरान जैसे मुल्क असैसिनेट करते हैं, मगर सऊदी अरेबिया ये करना चाहता है कि इनको वापस लेकर आकर उन पे दबाव डालकर, उनके रिश्तेदारों पे दबाव डालकर, वो चाहता है कि ये अपनी जो पोजीशन है उसको रिवर्स कर लें। तो वही प्लान वो खाशुजी के लिए ट्राई कर रहे थे और अब शायद चंद घंटों में या ज्यादा से ज्यादा कल तक वो एक्नॉलेज कर देंगे कि खाशुजी एक्सीडेंटली मारा गया। CNN भी रिपोर्ट कर रहा है, फॉक्स भी रिपोर्ट कर रहा है, MSNBC भी यही कह रहा है कि दो सऊदी सोर्सेज से पता चल रहा है कि सऊदी अरेबिया एक्नॉलेज करने वाला है कि उनकी इंटरोगेशन के दौरान कुछ गलती हो गई। और
लेकिन सर, जिस तरीके से राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि कुछ रॉक किलर्स यानी बदमाश कातिलों का ये काम हो सकता है, और उन्होंने शाह सलमान के बयान को दोहराया कि उन्हें जानकारी नहीं है, तो राष्ट्रपति ट्रंप सऊदी का जो शाह परिवार है उसके साथ खड़े होते नजर आ रहे हैं, क्या वजह इसकी लगती है?
सऊदी अरेबिया का जो फाइनेंशियल डिस्पोजेबल इनकम है उसका बहुत बड़ा क्लाउट है। जब ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे तो उनका जो पहली ट्रिप थी वो सऊदी अरेबिया को थी। वहां पे उन्होंने $110 बिलियन की मिलिट्री एड को साइन किया था। तो इस तरह की जो ये कहते हैं ना गोल्डन गूस को वो मारना नहीं चाहते।
एक तरफ तो राष्ट्रपति ट्रंप ये कहते हैं कि वो सख्त सजा सऊदी को देंगे अगर कत्ल की बात साबित होती है, एक तरफ वो बदमाश कातिलों की बात करते हैं, एक तरफ यूरोप है जो खुल के उसकी आलोचना करता है, और अब वो अचानक अपने विदेश मंत्री को सऊदी भेज देते हैं, क्या विडंबना क्या है अमेरिका के इस पूरे मामले में?
ये हादसा होने से पहले امریکہ کے سعودی عربیہ کے ساتھ تھوڑے سے تعلقات کمزور ہو گئے تھے. ٹرمپ نے ریلی میں کہا تھا کہ امریکہ کے سپورٹ کے بغیر سعودی عربیہ 10 منٹ بھی برقرار نہیں رہ سکتا. دوسری یہ جو یمن میں جو جنگ چل رہی ہے جس میں سیویلین کیجولٹیز بڑھتے جا رہے ہیں, ہیومن رائٹس وائلیشن ہوتے جا رہے ہیں, اور امریکہ میں میڈیا میں کافی کوریج ہو رہا ہے کہ سعودی عربیہ کو امریکہ سپورٹ کر رہا ہے, سعودی عربیہ امریکہ کے ہتھیاروں سے لوگوں کو سیویلینز کو مار رہا ہے. سینٹ چاہتی ہے, یو ایس سینٹ, کہ سعودی عربیہ پہ سینکشن لگا جائے کیونکہ انہوں نے ایک شخص کے اوپر اسیسینیٹ کیا اور وہ بھی ایک جرنلسٹ کو. تو یہ مسئلہ کافی سیریس ہو رہا تھا, تو سعودی عربیہ نے ہو سکتا ہے ریئلائز کیا اور بیسیکلی اپنی پوزیشنز کو انہوں نے ریورس کی. تو اس کے بیسس پہ ٹرمپ اپنی پوزیشن ریورس کی, ٹرمپ نے اپنی پوزیشن بدلی ہے تھوڑی سی, یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی سعودی لیڈرشپ از ناٹ انوالوڈ, ان کے نیچے جو انٹیلیجنس آپریشن تھے وہ انہوں نے ایک روگ آپریشن کیا ہے اور دیٹ وینٹ بیڈ.
پروفیسر مقتدر خان سے بات کی دل نواز پاشا نے. کارکرم میں اب رخ بھارت کا. بھارتیہ ودیش راجیہ منتری ایم جے اکبر نے اپنے اوپر یون اتپیڑن کے آروپ لگانے والی ایک مہیلا پترکار کے خلاف کل مانہانی کا مقدمہ درج کرایا. اس کے کچھ ہی دیر بعد مہیلا پترکار پریا روانی نے بھی اپنی طرف سے بیان پیش کر کہا کہ وہ سچ ضرور ثابت کریں گی. قریب 10 مہیلاؤں نے می ٹو مہم کے تحت ایم جے اکبر پر یون اتپیڑن کے آروپ لگائے ہیں. سنیے بی بی سی سنواداتا نوین نیگی کی رپورٹ.
بھارتیہ ودیش راجیہ منتری ایم جے اکبر نے اپنے خلاف یون اتپیڑن کا آروپ لگانے والی ایک مہیلا پترکار پر مانہانی کا معاملہ درج کرایا ہے. ایم جے اکبر کی کارروائی کے کچھ گھنٹے بعد پریا رمانی نے ایک بیان جاری کیا. انہوں نے کہا کہ وہ اپنے خلاف مانہانی کے آروپوں پر لڑنے کے لیے تیار ہیں. اپنے بیان میں پریا رمانی نے جو کہا اس کا سار کچھ یوں ہے.
سچ اور صرف سچ ہی میرا بچاؤ ہے. مجھے اس بات سے بڑی نراشا ہوئی ہے کہ کیندری منتری نے کئی مہیلاؤں کے آروپوں کو راجنیتک سازش بتا کر خارج کر دیا ہے.
ایم جے اکبر نے پریا رمانی کے خلاف مانہانی کا معاملہ درج کراتے ہوئے آروپ لگانے والی انیہ مہیلاؤں پر اسی طرح کی قانونی کارروائی کی چیتاونی دی ہے. ایم جے اکبر راجنیتی میں آنے سے پہلے دیش کے سب سے پربھاوشالی سمپادکوں میں سے ایک رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنے خلاف آروپوں کی وجہ سے استعفیٰ نہیں دیں گے. بھارت میں می ٹو مہم کے تحت مہیلاؤں نے کئی لوگوں کے خلاف اتپیڑن کے آروپ لگائے ہیں. اپنے خلاف آروپ لگنے کے دوران ایم جے اکبر آدھیکارک دورے پر ودیش میں تھے. 14 اکتوبر کو بھارت لوٹنے کے بعد انہوں نے تمام آروپوں کو جھوٹا اور نرادھار بتایا. ایم جے اکبر پر پریا رمانی کے آروپوں کے بعد کئی انیہ مہیلائیں بھی سامنے آئیں جنہوں نے اکبر پر پریڈیٹری بیہیویئر کا آروپ لگایا. اس کے علاوہ میڈیا جگت کے بھیتر بھی کئی سنگٹھن آروپ لگانے والی مہیلاؤں کے سمرتھن میں آئے ہیں. انہوں نے اکبر کے استعفے کی مانگ کی ہے. انڈین ویمن جرنلسٹ پریس کور کی جنرل سیکرٹری رویندر باوا نے کہا,
ایم جے اکبر ایک پوسٹ پہ بیٹھے ہیں, راجیہ سبھا کے ایم پی ہیں, ایک منتری ہیں, وہ بھی ایکسٹرنل افیئرز کے منسٹر ہیں. ایک ریسپانسبلٹی ان کی بنتی ہے اور سرکار کی بھی بنتی ہے, کیونکہ اگر آپ جانچ ہی نہیں کریں گے اور ایک فیئر طرح سے جانچ کے لیے منتری کو اپنے منتری پد چھوڑنا چاہیے, اور یہی ہم پترکاروں کی مانگ ہے کہ معاملے کی جانچ ہو.
اسی طرح کی بات ورشٹھ پترکار سہاسنی حیدر نے بھی کہی ہے. انہوں نے کہا کہ جب اتنی مہیلائیں کسی ویکتی پر آروپ لگا رہی ہیں تو انہیں پد پر بنے نہیں رہنا چاہیے.
جانچ تبھی ہو سکتی ہے اگر جو منتری ہیں اور ایک کافی مطلب پاورفل منتری ہیں وہ اگر اپنے پد سے ہٹ جائیں جب تک ایک پوری طرح سے نشپکش جانچ ہو سکے ان پہ. اور مجھے لگتا ہے کہ یہی سنگٹھنوں نے کہا ہے کہ ان کے خلاف جس طرح کے آروپ ہیں وہ کافی سنگین ہیں, کافی سیریس ہیں.
بھارت میں پچھلے ایک پکھواڑے میں ایک کے بعد ایک کئی مہیلاؤں نے اپنے ساتھ کئی ورشوں پہلے ہوئے یون اتپیڑن کے بارے میں کھل کر بات کی ہے. اب تک 10 سے ادھک مہیلائیں #MeToo کے ذریعے ایم جے اکبر پر یون اتپیڑن اور درویوہار کے آروپ لگا چکی ہیں. دیش کے پربھاوشالی سمپادکوں میں سے ایک رہے ایم جے اکبر دا ٹیلی گراف, دا ایشین ایج کے سمپادک اور انڈیا ٹوڈے کے ایڈیٹوریل ڈائریکٹر رہ چکے ہیں. نوین نیگی, بی بی سی, دلی.
می ٹو مہم کے ذریعے بھارت میں مہیلائیں سوشل میڈیا پر کھل کر اپنے ساتھ ہوئے یون اتپیڑن کے بارے میں بتا رہی ہیں. ان کہانیوں کا ایک بڑا حصہ میڈیا سے آ رہا ہے. دیکھا جائے تو اتپیڑن کے واقعے بتانے والی زیادہ تر مہیلائیں انگریزی میڈیا سے ہیں, لیکن ہندی اور کھیتریہ میڈیا میں کام کرنے والی مہیلا پترکار اس بارے میں کھل کر نہیں بول رہی ہیں. کیا واقعی میں ایسا ہے, اور اگر ایسا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ سنیے بی بی سی سنواداتا سندھو واسنی کی رپورٹ.
انگریزی میڈیا سے کہیں بڑے ہندی اور کھیتریہ میڈیا سے مہیلاؤں کی آوازیں کیوں باہر نہیں آ رہی ہیں؟ کیا وہاں مہیلا پترکاروں کے ساتھ یون اتپیڑن جیسی گھٹنائیں نہیں ہوتی؟ ऐसा भी नहीं कह सकते कि वहाँ की लड़कियाँ कुछ बोल ही नहीं रही हैं, दबी दबी ही सही आवाजें आने लगी हैं, लेकिन इन्हें बुलंद होने से कौन रोक रहा है। कुछ सालों पहले ही पत्रकारिता के पेशे में दाखिल होने वाली भारती इसके पीछे कई वजह बताती हैं।
कुछ भी कर लो छोटे शहर या उसमें वही है कि लड़कियां अंदर से बहुत डरी हुई है, वो कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है। मतलब आपके परिवार में भी वही माहौल होता है ना कि अच्छा ठीक है इग्नोर करो या फिर संभल के जाना था, तुम खुद ही डिस्टेंस बना के रहती, वो वाला सारा सीन तो सबकी फैमिली में होता है। तो मुझे लगता है कि वो उस तरीके से उनका माइंड तैयार ही नहीं होता कि वो रिएक्ट कर सके या आवाज उठा सके।
तेलुगु मीडिया में 40 साल का अनुभव रखने वाली पद्मजा शॉ मानती हैं कि तेलुगु न्यूज रूम्स का माहौल अब भी बहुत हद तक पितृसत्तात्मक है। लड़कियों को पत्रकारिता के पेशे में आने नहीं दिया जाता, वो किसी तरह आती भी हैं तो ऊंचे पदों तक नहीं पहुंचने दिया जाता। पद्मजा को लगता है कि तेलुगु और क्षेत्रीय मीडिया में काम करने वाली लड़कियां शायद अभी इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती, क्योंकि बोल वही सकता है जिसे नौकरी जाने का डर ना हो। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के पूर्व संपादक नीरेंद्र नागर हिंदी मीडिया में मीटू का शोर कम होने के पीछे एक दूसरी वजह भी बताते हैं।
उसकी एक वजह तो ये कि लड़कियां कम हैं अंग्रेजी मीडिया के मुकाबले, हिंदी में लड़कियां कम हैं, और ये लड़कियां जो हैं मुझे लग रहा है जैसे इस आधुनिक कहते हैं कि बॉस के साथ मान लिया कहीं चले गए जस्ट फ्रेंड के रूप में या किसी के साथ चले गए, वो कम करती हैं। जैसे मैं भी अपने नवगढ़ में देखता था कहीं जाना है तो लड़कियां ही मिलके जाती थी, लड़कियां लड़के उस तरह से कम होता है।
गोवा में काम करने वाली स्वतंत्र पत्रकार मनस्विनी प्रभुणे नायक पिछले 25 साल से पत्रकारिता के पेशे में हैं। मनस्विनी स्वीकार करती हैं कि मराठी मीडिया में भी महिला पत्रकारों का यौन उत्पीड़न होता है।
सेक्सुअल हैरेसमेंट मींस वो सिर्फ शारीरिक ही नहीं होता है, बात का तरीका वैसे होता है, बात करने का। जैसे किसी लड़की को रोज बहुत अच्छी लग रही हो, अब बहुत सेक्सी लग रही हो, अब ऐसी लग रही हो, अब वैसी लग रही हो, ऐसे तरीके से ताकि वो अनकंफर्टेबल महसूस करे।
मनस्विनी, भारती और पद्मजा चुप्पी की जो वजह बताती हैं वो मिलती जुलती हैं, लेकिन आखिर में वो यही उम्मीद जताती हैं कि मीटू मुहिम का कुछ असर तो जरूर होगा और आने वाले वक्त में हिंदी और क्षेत्रीय मीडिया में काम करने वाली महिला पत्रकार भी इस बारे में बेझिझक होकर बात कर पाएंगी। सिंधुवासिनी, बीबीसी दिल्ली।
कार्यक्रम में अब रुख हरियाणा का। आपको याद होगा हिसार के बरवाला से बाबा रामपाल को साल 2014 में जब पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची थी तो उनके समर्थकों ने मानव ढाल बनाकर उनको बचाने की कोशिश की थी। रामपाल पर हत्या और कई अन्य मामले दर्ज हैं। इन मामलों में रामपाल को आज हिसार में सजा सुनाई जानी है। रामपाल पर कौन कौन से मामले दर्ज हैं और सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने क्या व्यवस्था की है, जानने के लिए बीबीसी संवाददाता नवीन नेगी ने हिसार में मौजूद स्थानीय पत्रकार सत सिंह से बात की।
पंजाब और हरियाणा जो हाई कोर्ट है उन्होंने इनको समन इशू किया था कि आप हमारे सामने पेश हों, क्योंकि इनके समर्थकों ने हिसार के कोर्ट में तोड़फोड़ की थी, तो हाई कोर्ट ने उसका कॉग्निजेंस लेकर के इनको समन इशू किए थे, लेकिन ये पेश नहीं हुए। तो जब पुलिस को कोर्ट ने कहा कि आप इनको पेश कीजिए, तब इनके जो समर्थक हैं वो इनके बरवाला हिसार में इनका जो आश्रम है वहां पर ह्यूमन शील्ड बन के खड़े हो गए, पुलिस को अंदर नहीं घुसने दिया। करीब करीब एक हफ्ते की मेहनत के बाद फाइनली पुलिस अंदर घुसी और रामपाल को अरेस्ट किया। अरेस्ट जब ये हो गए तो पुलिस ने दो FIR इनके ऊपर दर्ज की, 302 यानी कि मर्डर, 343 रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट यानी कि जो इनके समर्थक थे वो बाहर आना चाहते थे लेकिन इन्होंने जबरदस्ती उनको आश्रम के अंदर रखा, और 120B यानी कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, तो इसके अंदर 4 महिलाएं और एक 18 महीने के बच्चे की मौत हो गई थी। और दूसरी FIR भी इनके ऊपर हुई जिसमें 302 और 343 और 120B इनके ऊपर लगाई, और उसके बाद लगातार 2014 से लेकर आज तक ये हिसार की सेंट्रल जेल के अंदर ये बंद है।
आज जो है इनको सजा का ऐलान होना है आज, तो क्या सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं?
आज अरेंजमेंट की जहां तक बात है तो करीब करीब ये मानिए जो हिसार रेंज में 1500 जवान जो है अभी सड़कों पर है, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्स है और 5 सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अलग अलग जगह से बुलाए गए हैं, 10 डेप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं और बाकी जो है 37 नाके जो हैं वो पूरे हिसार में लगाए हैं। डिप्टी कमिश्नर हिसार ने सेक्शन 144 यानी कि प्रोहिबिटरी ऑर्डर लगा दिए हैं, 5 या उससे ज्यादा व्यक्ति एक जगह इकट्ठा नहीं होंगे किसी भी हथियार के साथ।
जी, और क्या आपकी बात किसी समर्थक से भी हुई है जो आज भी रामपाल का समर्थक हो, उनसे बात हुई है, उनका क्या कहना है?
मेरी बात दुशतलोक आश्रम है, उनके जो स्पोक्स पर्सन है चांद राठी, उनसे मेरी बात हुई। मैंने उनसे पूछा कि क्योंकि कानून के हिसाब से 302 का मामला है, मिनिमम पनिशमेंट जो है आजीवन कारावास है, तो उनसे पूछा कि आपकी तरफ से क्या रिएक्शन रहेगा, क्या आपकी तरफ से कोई प्रोटेस्ट रहेगा? तो जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने मुझे बताया कि जी हमारी तरफ से इस तरह का कोई भी रिएक्शन नहीं रहेगा, जो कुछ भी कोर्ट हमें फैसला सुनाएगा वो हमें मंजूर है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हमने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में अपील लगानी है, हम इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं होंगे और हम ये सोचते हैं कि हाई कोर्ट हमें रिलीफ देगा।
रामपाल की सजा का ऐलान आज, बता रहे थे हमारे सहयोगी सत सिंह। और अब आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं अखबारों ने किन खबरों को पहले पन्ने पर जगह दी है। अखबारों के साथ दिलनवाज पाशा स्टूडियो में आ चुके हैं, जानते हैं उनसे आज क्या कहते हैं अखबार।
जी मानसी, आज भी अखबारों में पहले पन्ने पर #MeToo यानी यौन शोषण के खिलाफ जो महिलाएं बोल रही हैं उससे जुड़ी खबर है। विदेश राज्य मंत्री MJ अकबर अदालत पहुंचे हैं, ये खबर लगभग सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। दैनिक भास्कर लिखता है अकबर ने किया मानहानि का केस, 97 वकील उतारे, इनमें 35 महिलाएं, और एक कार्टून भी बनाया है अकबर को मुगल बादशाह अकबर के रूप में दिखाते हुए। लिखा है यह अकबर द्वितीय का दरबार है और इसमें पूरे 97 रत्न है। अकबर के पीछे वकीलों की एक फौज खड़ी है।
जी,
इसके अलावा एक और खबर जो लगभग सभी अखबारों में पहले पन्ने पर है आज, वो है कल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सऊदी अरब के मंत्री और तेल क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों के अधिकारियों के बीच दिल्ली में बैठक हुई। इंडियन एक्सप्रेस ने तस्वीर प्रकाशित की है, नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं और सऊदी के मंत्री बोल रहे हैं। और इस पर जो अखबारों ने लिखा है कि सऊदी अरब भारत की बात सुन रहा है, तेल के जो दाम बढ़ रहे हैं उसको कम करने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं। पंजाब केसरी ने इसी पर शीर्षक लगाया है, तेल की कीमतों पर एक्शन में मोदी। और इससे जुड़ी एक और खबर अखबारों में साइड में छोटी सी छपी है कि भारत सरकार ने 10 दिन पहले जो डीजल और पेट्रोल के दामों में कटौती की थी
वो हर दिन की कटौती
2.5 रुपए की थी, वो हर दिन बढ़कर आज हालात ये हो गए हैं कि दाम वहीं पहुंच गए हैं, बस जनता को पता नहीं चला था। ये अखबारों ने लिखा है अलग अलग तरीके से। कल BBC ने भी खबर प्रकाशित की थी और सब जगह खबर आई थी, ये मेवात का जो पलवल इलाका है वहाँ एक मस्जिद की फंडिंग को लेकर खबर थी। इससे जुड़ी खबरें आज लगभग सभी अखबारों के पहले पन्ने पर हैं। दैनिक जागरण लिखता है आतंकी फंडिंग से बनी मस्जिदों और मदरसों की संपत्ति जब्त की जाएंगी, और ये खबर इसी तरह से अलग अलग
इससे जुड़ी एक खबर आज हम कार्यक्रम में श्रोताओं को सुनाने वाले भी हैं।
जी बिल्कुल, और अखबार बता रहे हैं कि चीन के सैनिक जो हैं भारत के क्षेत्र में घुसे हैं और चीनी हेलीकॉप्टर भी भारत के क्षेत्र में घुसा है, ये दावा आज के अखबार कर रहे हैं। हिंदी अखबारों में खासकर ये खबर है, दैनिक भास्कर लिखता है लद्दाख में चीनी हेलीकॉप्टर और अरुणाचल में सैनिकों ने लगाए टेंट। द टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित एक खबर का मैं जिक्र करना चाहूँगा जिसमें एक छात्र ने सिर्फ इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि उसने एक हादसे में एक बच्चे की मौत होते हुए देखी थी और उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि उस बच्चे की आत्मा मुझे परेशान कर रही थी। उसने ये भी लिखा है कि मैं उसको बचा नहीं पाया और इस अफसोस में मैं जान दे रहा हूँ।
जी, अखबारों की विस्तृत समस्या के समीक्षा के लिए शुक्रिया दिलनवाज पाशा। दिल्ली से 2 घंटे की दूरी पर उतावड़ मेवाती मुसलमानों का एक पिछड़ा गांव है जहां सोमवार को दर्जनों मीडिया वाले आ गए। चर्चा के केंद्र में थी एक मस्जिद जो बाहर से छोटी और अधूरी थी लेकिन अंदर से बड़ी और सुंदर थी। केंद्रीय जांच एजेंसी ANI के अनुसार इस मस्जिद की फंडिंग पाकिस्तान स्थित हाफिज सईद की एक संस्था ने की है। मस्जिद के इमाम मोहम्मद सलमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। BBC संवाददाता जुबैर अहमद ने सोमवार को पलवल की इस मस्जिद का दौरा किया और वहां के लोगों से बात की, सुनिए उनकी रिपोर्ट।
इस वक्त हम दिल्ली से 60 किलोमीटर दूर उतावड़ गाँव में है जो पलवल इलाके में है, और इस मस्जिद है ये खुलफाए राशिदीन मस्जिद है, यही वो मस्जिद है जिसपे NIA का ये इल्ज़ाम है कि इसे हाफिज सईद के पैसे से बनाया गया है। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं मस्जिद की तामीर से, मस्जिद के निर्माण के समय से जुड़े हुए हैं।
जी, ये आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद शाकिर है। ये मस्जिद खुलफाए राशिदीन है और इसमें बच्चे भी पढ़ते हैं माशाल्लाह। जो मस्जिद का काम शुरू हुआ उसके लिए लोगों ने पैसे इकट्ठे करे, मस्जिद वजूद में आई, उसके वजूद में आने के बाद में जो है लोगों को एक जुम्मेदार की ज़रूरत पड़ी कि भाई इस मस्जिद के लिए कौन जुम्मेदार बनाया जाए, तो गांव के और इलाके के तमाम लोगों ने यही मशवरा किया कि सलमान साहब को, क्योंकि उसके बाप बहुत बड़े एक अल्लाह वाले थे, हज़रत मौलाना दाऊद साहब, मरकज़ निज़ामुद्दीन में 70 साल उसने पुकाई।
इस गांव की आबादी कितनी है?
इस गांव की आबादी जनगणना में लगभग 17,000 के करीब है।
तो 17,000 की आबादी वाली वाले गांव में इतनी बड़ी मस्जिद की ज़रूरत क्यों पड़ी, आप बताइए।
इसलिए पड़ी कि जनाब हमारे यहाँ तकरीबन 84 गांव का एक मजमत में वो होता है, जोड़ होता है, उसमें सारे गांव इकट्ठे होकर अपनी अपनी मस्जिदों की कारगुजारी देते हैं कि हमारी मस्जिदों में दीन का काम।
हमें ये महसूस हो रहा है कि यहीं के लोगों ने इस ज़मीन के ऊपर कुछ मुकदमे चल रहे थे, हो सकता है उसमें से किसी लोगों ने सलमान के खिलाफ कुछ कार्रवाई की हो, एप्लीकेशन।
किस तरह का मुकदमा चल रहा था इस मस्जिद पे?
मुकदमा इस तरह का चल रहा था, लोगों ने करोड़ों रुपए की जायदाद दाब रखी है, कई करोड़ों रुपए की जायदाद दाब रखी है, तो मस्जिद के जब क्या नाम है उस हटाने की कोशिश की गई तो उन लोगों ने लड़ाई झगड़ा भी शुरू किया और क्या नाम है सलमान से ये धमकी भी दी कि हम तुझे देखेंगे कि तेरे साथ वो हाल करेंगे, तू सदा मदा जो जेल में सड़ता रहे।
तो इन्होंने ये इल्ज़ाम क्यों लगाया आप लोगों के ऊपर कि आपके पैसे जो मस्जिद तामीर हुई है, वो पैसा जो निर्माण हुआ है मस्जिद का, वो पैसा हाफिज़ सईद की जो एक संस्था थी वहाँ से आया?
इसलिए कि ये इनकी ताकत कमज़ोर हो जाए, आगे हमें मुकाबले करने के लिए कोई रहेगा नहीं, इसलिए हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। सलमान पर इल्ज़ाम जो लगाया सिर्फ इसलिए लगाया।
जो पैसे आए उसका हिसाब होगा मस्जिद के पास?
मस्जिद के पास तकरीबन 92 लाख रुपए का हिसाब दे दिया, जो हमने गांव से या यहाँ से इलाके से इकट्ठा किया उसका रिकॉर्ड भी दिया है।
लेकिन जो विदेश से जो मदद आई उसका तो आपको पता है कि हालात कैसे हैं, तो आपको हिसाब रखना चाहिए था उसका।
पहली बात तो यह है कि विदेश से मदद आई नहीं है, और अगर आई है तो किसी और ही मुल्क से आई होगी, पाकिस्तान से हम कभी वसूल नहीं कर
रहे। नहीं कह रहे, वो कह रहे दुबई से, जो कह रहे हैं कि दुबई से, लेकिन जो संस्था जो
सईद का आरान है,
हाँ संस्था जो वहाँ पर थी जिससे जुड़े हुए थे वो साहब जो पैसे भेज रहे थे वो हाफिज सईद की संस्था से जुड़े हुए थे, लेकिन
आते थे, मैंने कहा अभी पैसे आते थे, उसको सलमान ने एग्री भी किया, जो थे उनके पास थोड़े बहुत पैसा आए थे, मैं अब भी कह रहा हूँ वो आए थे, वो चंदा के तौर पे वहाँ से जो आए थे बच्चियों की कुछ शादी के लिए, कुछ चंदा जो है वहाँ के अमीरों ने बहुत थोड़ा बहुत दिया उनके लिए दिया है, वो उसको आगे सलमान ने लगाया इसमें।
अब यहाँ पर जितने लोग हैं सब यही कह रहे हैं कि ये इल्ज़ाम NIA ने जो लगाया है वो मनगढ़ंत है, झूठा इल्ज़ाम है, और सलमान की जो गिरफ्तारी की गई है वो भी गलत है। यहाँ पर पैसे बाहर से नहीं आए हैं, बल्कि कुछ आए भी हैं तो उन्होंने उसको डिक्लेयर किया है, और ये कि लोकल लोगों ने जो चंदा दिया है कुछ सालों में देते रहे हैं, उसी से ये मस्जिद बनी है। ज़ुबैर अहमद, BBC, पलवल।
और अब कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं खेल की खबरें।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं सूर्यांशी पांडे। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं डेनमार्क, जहां पर आज से बैडमिंटन में डेनमार्क ओपन की शुरुआत होने जा रही है, और ये मुकाबला डेनमार्क के ओडेंस शहर में खेला जाएगा, जिसके अंदर भारत की तरफ से मेजबानी करती नजर आएंगी PV सिंधु और साइना नेहवाल, तो वहीं पुरुषों की तरफ से HS प्रणय, किदांबी श्रीकांत और T साईनाथ कमान संभालेंगे। इस मुकाबले के पहले राउंड में HS प्रणय का मुकाबला होगा वान हु संग के साथ, जो साउथ कोरिया के खिलाड़ी हैं, तो वहीं किदांबी श्रीकांत का मुकाबला होगा डेनमार्क के खिलाड़ी हांस क्रिस्टीन सोलबर्ग के साथ। तो वहीं विमेन सिंगल्स की बात करें तो वहां पर PV सिंधु का मुकाबला होगा USA के खिलाड़ी झोंग बेविन के साथ, और साइना नेहवाल भिड़ेंगी हांगकांग की खिलाड़ी न्यान ही चोंग के साथ। और बैडमिंटन के मैदान से अगर आपको क्रिकेट के मैदान की ओर लेकर जाएं तो वहां पर #MeToo ने दस्तक दे दी है। यौन शोषण के आरोप में घिरे BCCI के CEO राहुल जौहरी ICC की बैठक में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। सचिव अमिताभ चौधरी बैठक में BCCI का प्रतिनिधित्व करेंगे। दरअसल BCCI के CEO राहुल जौहरी पर एक महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। महिला ने उन पर नौकरी देने के बदले अनुचित व्यवहार का आरोप लगाया था। COA ने इस मामले पर राहुल से एक सप्ताह के भीतर सफाई देने को कहा था। सफाई के आधार पर ही BCCI कार्रवाई का फैसला लेगा।
और अब कार्यक्रम में आपसे विदा लें, उससे पहले मुख्य समाचार एक बार फिर दिलनवाज पाशा से।
तुर्की के जांच अधिकारी पत्रकार जमाल खाशोजी के लापता होने के मामले की जांच के लिए सऊदी के दूतावास के भीतर गए हैं। इसी बीच अमरीकी मीडिया ने रिपोर्ट दी है कि सऊदी अधिकारी खाशोजी की मौत की बात स्वीकार कर सकते हैं। दक्षिण पश्चिम फ्रांस के कारकासोन शहर में अचानक आई बाढ़ से कम 11 लोगों की मौत हो गई है। अमरीकी सीनेटर एलिजाबेथ वॉरेन ने अपने DNA टेस्ट के नतीजे पेश करके राष्ट्रपति ट्रंप को जवाब दिया है। ट्रंप ने वॉरेन के अमरीका की मूल निवासी होने के दावों पर सवाल उठाए थे। BBC समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला अजीत सारथी ने। अगला प्रसारण दिन भर शाम 7:30 बजे। तब तक आपके साथ है बीबीसी हिंदी का .com पन्ना। फिलहाल मानसी दास को पूरी टीम समेत दीजिए इजाजत। नमस्कार।